चतुर्थ अध्याय आलोच्य उपन्यासों में कामकाजी महिलाओं का चित्रण। पृष्ठ संख्या 206। प्रास्ताविक। कामकाजी महिला यह शब्द भ्रांति पैदा कर सकता है। उससे यह निष्पादित हो सकता है कि अन्य महिलाएं कामकाज नहीं करती, बैठे ठाले गप सप करती रहती हैं, जबकि भारतीय समाज को देखते हुए दूसरे ही प्रकार का चित्र सामने आता है। हमारी समाज व्यवस्था में प्रायः नारी दिन भर कार्यरत रहती है। प्रातः सबसे पहले वह उठती है, रात में सबके बाद सोती है। इस प्रकार दिन भर वह छोटे मोटे कामों में खटती रहती है। खाना पकाना, झाड़ू बर्तन करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, जैसे अनेक छोटे मोटे काम उसके जिम्मे रहते हैं। गांव में तो स्थिति और भी विकट है। उक्त घरेलू कामकाज के अलावे खेती बारी का काम तथा कहीं कहीं पशुपालन का काम भी उनके जिम्मे रहता है। घर चलाने में उनकी एक अहम भूमिका रहती है। फलतः पुराने समय में कुमाऊं प्रदेश में या ग्रामीण प्रदेश में लोग बाग दो तीन बीवियां कर लेते थे। शैलेश मटियानी के उपन्यास तथा कहानियों में प्रस्तुत स्थिति का यथार्थ आकलन उपलब्ध होता है। संस्कृत में पत्नी के लिए भार्या शब्द भी प्रचलित है। भार्या अर्थात वह स्त्री जिसका भरण पोषण पुरुष को करना होता है, परंतु यहाँ स्थिति उसके विपरीत है। स्त्री पुरुष से अधिक काम करती है और घर के आर्थिक ढांचे को बरकरार रखने में उसका योगदान भी अधिक होता है। संस्कृत में पुत्री के लिए दुहिता शब्द मिलता है, जो गायों का दूध दोहन करती है, उसे दुहिता कहते थे, परंतु यह कार्य अधिकांशतः घर की कन्याएं ही करती थीं। अतः कालांतर में अर्थ संकोच से उसका अर्थ केवल पुत्री हो गया। इससे भी ध्वनित होता है कि स्त्रियों को घर के छोटे मोटे कामों के लिए प्रारंभ से ही प्रशिक्षित किया जाता रहा है। यह छोटे मोटे काम अलग अलग किस्म के होते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे परिश्रम साध्य नहीं होते, बल्कि कई बार तो देखा गया है कि उन कामों में और भी अधिक मानव श्रम लगता रहा है। इसीलिए नारी मात्र कामकाजी व्यक्तित्व रखती है। परंतु इधर हिंदी आलोचना में कुछ शब्द रूढ़ हो गए हैं और वे सीमित अर्थ देने लगे हैं। कामकाजी महिला भी एक ऐसा ही शब्द है। अब कामकाजी महिला से यह अर्थ लिया जाता है कि उन महिलाओं को कामकाजी संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है जिनका श्रम प्रकट रूप से अर्थोत्पादन में लगा हुआ है। महिलाएं घर के छोटे मोटे काम करती हैं, खेती बारी या पशुपालन में हाथ बटाती हैं। पृष्ठ संख्या 207। फिर भी उन्हें कमाऊ व्यक्ति की संज्ञा कभी नहीं मिली। जो काम वे घर में करती हैं, वे ही काम वे यदि बाहर करें तो उन्हें अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, परंतु चूंकि वे घरेलू काम करती हैं जिनसे प्रकट रूप से कोई आमदनी होती हुई नजर नहीं आती, अतः उन्हें कमाऊ नहीं समझा जाता। प्राचीन व्यवस्था में कमाऊ पूत शब्द तो मिलता है, परंतु कमाऊ पुत्री या कमाऊ पत्नी ऐसा शब्द नहीं मिलता, बल्कि उसे हेय दृष्टि से भी समझा जाता है। उस व्यवस्था के अनुसार पुरुषों की गणना कमाने वालों में होती है, अतः उनका महत्व भी अधिक होता है। यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी परिवार के नारी सदस्यों की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाला होता था। अभी भी ग्रामीण प्रदेशों में तथा शहरों में भी बहुत से परिवारों में पुरुष के भोजन ग्रहण कर लेने के उपरांत ही स्त्रियां भोजन करती हैं, बल्कि पति के जूठे खाने को तो पतिव्रता धर्म में शामिल कर लिया गया है। पैराग्राफ चेंज। हेडिंग है कामकाजी महिला विषयक विभावनाएं। फलतः अब इसी नई समाज व्यवस्था में नौकरीशुदा महिला को कामकाजी महिला की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि नौकरी के कारण प्रकटतया वह आर्थिक उत्पादकों की श्रेणी में आ जाती है। अतः यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि नारी के गृहिणी रूप में किए गए कार्यों को कामकाजी महिला के क्षेत्र में नहीं गिना जाता। डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल के मतानुसार इन्वर्टेड कॉमा ओपन, महिला के कामकाजी होने के लिए दो बातें विशेष रूप से अनिवार्य है। एक तो उसका कार्य पति अथवा परिवार के सदस्यों से स्पष्ट रूप से या तो पृथक हो या पृथक मान्यता प्राप्त हो। दूसरे, उसे अपने श्रम का प्रतिदान मिले। उल्लेखनीय है कि कि पति के साथ ईटा गारा ढोने वाली स्त्री मजदूरों को इसी अर्थ में कामकाजी माना जाता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ। हिंदी उपन्यासों में कामकाजी महिला डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल पृष्ठ संख्या 55। पैराग्राफ चेंज। अतः सामान्य तौर पर कामकाजी को सफ़ेद पोश नौकरियों का पर्याय मान लिया गया है। अतः दफ्तरों, अस्पतालों, विद्यालयों आदि में कार्यरत सुशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित महिलाओं को कामकाजी महिलाओं की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर अवधेश चंद्र गुप्त के मतानुसार प्रशासनिक कार्यों में शिक्षित और अर्धशिक्षित नारियां कार्य करती हैं, जिन्हें कामकाजी महिलाएं कहा जाता है, और पारिवारिक कार्य करने वाली नारियों को दासी अथवा सेविका कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। डॉक्टर गुप्त की उपर्युक्त विभावना में थोड़ी भ्रांति रह गई है। उन्होंने पारिवारिक कार्य करने वाली नारियों को दासी अथवा सेविका कहा है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि कोई नारी यदि किसी दूसरे परिवार में पैसे लेकर पारिवारिक कार्य करती है तब उसे दासी सेविका या नौकरानी कहा जाएगा। मंजुल भगत कृत अनारों की अनारों को इसके अंतर्गत ले सकते हैं, परंतु यदि कोई नारी अपने घर परिवार का कार्य करती है तो उसे दासी या सेविका नहीं कहा जाएगा। डॉक्टर अनिल गोयल ने दफ्तरों में काम करने वाली शिक्षित महिलाओं को कामकाजी माना है। पैराग्राफ चेंज पृष्ठ संख्या 208। कामकाजी शब्द का सम्यक एवं संतुलित विवेचन करते हुए डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल कुछ एक प्रश्नों को उकेरती हैं। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर अनिल गोयल तथा डॉक्टर अवधेश चंद्र गुप्त उभय की परिभाषाओं का विश्लेषण करते हुए उनसे अपनी असहमति प्रकट करती हैं। उनके शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा ओपन। इन दोनों परिभाषाओं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि शिक्षा एवं बौद्धिक प्रतिभा के बल पर दफ्तरों आदि में काम करके अर्थोपार्जन करने वाली महिलाएं ही यदि कामकाजी हैं तो खेतों, कारखानों, खदानों और दूसरों के घरों में जाकर अकुशल श्रम के बदले धनोपार्जन करने वाली महिलाएं क्या हैं? दासी अथवा सेविका कहकर इन्हें कामकाजी महिलाओं के वर्ग से बाहर नहीं किया जा सकता। हाँ, पद के आधार पर कामकाजी महिला के भेद करके उन्हें यह नाम दिया जा सकता है। इस प्रकार जहाँ प्रथम परिभाषा अशिक्षित एवं अकुशल महिला श्रमिकों की उपेक्षा करने के कारण अपूर्ण है, वहीं दूसरी परिभाषा उन्हें शिक्षित नौकरी पेशा महिला से अलगाकर कामकाजी शब्द के अर्थ को संकुचित कर देती है। अतः किसी भी संतुलित परिभाषा तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि कामकाजी शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अध्ययन किया जाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ। हिंदी उपन्यासों में कामकाजी महिला डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल पृष्ठ संख्या 55। पैराग्राफ चीन। कामकाजी शब्द कामकाज में ई प्रत्यय लगाने से बना है। कामकाज में दो शब्द हैं, काम प्लस काज। काम शब्द संस्कृत के कर्म ब्रैकेट में कर्म कम काम से तथा काज शब्द संस्कृत के कार्य ब्रैकेट में कार्य कारज काज से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार वस्तुतः दोनों शब्दों की ध्वनि एक ही है, परंतु अर्थ पर बल देने के कारण उसका प्रयोग दो बार हुआ है। इस प्रकार परिश्रम साध्य, चाहे वह परिश्रम शारीरिक हो या मानसिक, कार्य को कामकाज कहा जाएगा और उससे संलग्नित व्यक्ति को कामकाजी। परंतु यहाँ यह ध्यानार्थ रहे कि यह कार्य या श्रम अर्थोपार्जन हेतु होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। अंग्रेजी में कामकाज के लिए वर्किंग शब्द मिलता है और इसीलिए बड़े शहरों में वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल भी हुआ करते हैं, जिनमें प्राय अविवाहित कामकाजी लड़कियाँ निवास करती हैं। वर्किंग शब्द के मूल में वर्क शब्द है, जिसका अर्थ होता है जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाला कोई काम जिसमें बौद्धिक तथा शारीरिक क्षमताओं को नियोजित किया जाता है। इसमें दो बातें स्पष्ट हैं कि कामकाजी होने के लिए व्यक्ति का काम करना या श्रम करना जरूरी हो जाता है। यह श्रम कुशल भी हो सकता है और अकुशल भी। दूसरे, इस श्रम का भुगतान होना चाहिए। यह भुगतान राष्ट्रीय मुद्रा में भी हो सकता है और किसी अन्य उपयोगी पदार्थ के रूप में भी। मोटे तौर पर कहें तो श्रम के बदले मिलने वाली मुद्रा ही गृहिणी एवं कामकाजी महिलाओं में विभाजन रेखा खींचती है। अतः जोसेफ मिनातुर से सहमत होते हुए कहा जा सकता है कि अर्थोपार्जन करने वाली महिलाएं ही कामकाजी महिलाएं हैं। इन्वर्टेड कॉमा पेन, वर्किंग वुमेन आर दोज हु आर इंगेज इन सम फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ, वुमेन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया में संकलित जोसेफ माथुर का लेख अल्फ्रेड डिसोजा, पृष्ठ संख्या 106। पैराग्राफ चेंज। परंतु यहाँ एक तथ्य की ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि अर्थोपार्जन कामकाजी होने की प्रथम शर्त होते हुए भी उसकी अंतिम शर्त नहीं है। यह अर्थोपार्जन किस प्रकार किया जा रहा है उसे देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्थोपार्जन समाज द्वारा अनुमोदित व्यवसायों से होना चाहिए। असामाजिक, अवैध, अनैतिक, गैरकानूनी तरीकों से अर्थोपार्जन करने वाले व्यक्तियों को कामकाजी संज्ञा में संकलित नहीं किया जाता। इस प्रकार वेश्याओं, कॉल गर्ल्स आदि औरतों को कामकाजी महिलाओं के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। सामान्य भाषा में ऐसी स्त्रियों को धंधा करने वाली या बाजारू की संज्ञा दी जाती है।